नमस्कार भारत 28 मई दिन शनिवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में गैर भाजपा नेताओं का जमावड़ा, क्या ये भाजपा के खिलाफ नए सियासी गठजोड़ की आहट है?
भाजपा को, संघ परिवार को दिल्ली के गद्दी से उतारना बहुत लाजमी और जरूरी हो गया है, इसलिए हम लोग बैठ करके सब बात करेंगे।
भाजपा ने कहा अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनेगा, लोगों को धैर्य से काम लेने की सलाह।
नहीं, लोगों को पेशेंस अपना बनाकर रखना पड़ेगा। ये कहते हैं कि अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा, ये बात ठीक नहीं। आखिर वहाँ पर तो राम मंदिर ही है।
और इस साल आईपीएल के फाइनल में हैदराबाद और बंगलोर का होगा मुकाबला, लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने कल लगातार दूसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। हालिया विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी और कुल 294 में से 211 सीटें जीती थीं। ममता के शपथ समारोह में उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई पार्टियों के नेता भी शामिल हुए और इस दौरान फेडरल फ्रंट के नाम से तीसरे मोर्चे के गठन की संभावना भी चर्चा में रही। दुनिया के 100 से ज्यादा शीर्ष वैज्ञानिकों ने कहा है कि जीका वायरस के कारण ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में होने वाले ओलंपिक खेलों को रद्द कर देना चाहिए या उनका स्थान बदल देना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि इस वायरस के बारे में नई खोजों के बाद ये अनैतिक होगा कि रियो में ओलंपिक खेल कराए जाएं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले ओटावा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आमिर अतारन ने बीबीसी को बताया, जीका के हालात में खेल नहीं कराए जाने चाहिए। रियो डी जेनेरियो में जीका वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, वहां जीका से लड़ने के लिए मच्छरों पर नियंत्रण की कोशिशें कामगार नहीं हो पा रही हैं। इस बारे में आंकड़े बहुत साफ हैं, इससे खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और उन्हें देखने वाले दर्शकों को खतरा है। इससे ऐसे देशों में भी जीका का वायरस चला जाएगा जो अभी इससे संक्रमित नहीं है। ये थे एक वैज्ञानिक आमिर अतारन के शब्द। हालांकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कह चुकी है कि उसे इसकी कोई वजह नहीं दिखती कि जीका के कारण ओलंपिक खेलों को कहीं और कराया जाए या इसमें देरी की जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का अगले सप्ताह लंदन में दिल का ऑपरेशन होगा। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मरियम ने लोगों से अपील की है कि वो उनके पिता के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करें। वहीं विपक्षी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्टी ने भी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जल्द अच्छा होने की कामना की है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी के बीच हडसन नदी में जा गिरा है। ये विमान द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने का है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि इस पर कितने लोग सवार हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर राहत टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। और इटली की नौसेना का कहना है कि उसे शुक्रवार को भूमध्य सागर से 45 शव मिले हैं। ये शव रबड़ की एक नौका के पास मिले जो आधी डूबी हुई थी, जबकि इस मामले में 135 लोगों को बचा लिया गया। बीबीसी समाचार।
तारीख 28 मई दिन शनिवार, स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। इससे पहले कि हम अपने प्रमुख खबर की ओर बढ़ें, जैसा कि आपने समाचारों में सुना, आपसी से थोड़ी देर पहले ये खबर आ रही है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर हडसन नदी में गिर गया है। अधिकारियों ने बताया है कि ये विमान दूसरे विश्व युद्ध के समय का था और अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इस विमान में कितने लोग सवार थे। हादसे के कारणों का भी अभी कोई पता नहीं चल पाया है। अमरीकी मरीन सैनिकों की टुकड़ी मौके पर मौजूद है और राहत कार्य जारी है। कार्यक्रम में आगे भी इस खबर पर हम नज़र बनाए रखेंगे। और अब लौटते हैं अपने प्रमुख खबर की ओर। कल कोलकाता में ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में गैर भाजपा नेताओं का जमावड़ा था। ममता बनर्जी लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह से ज्यादा इन नेताओं की उपस्थिति के मायने निकाले जा रहे थे। बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव, फारूक अब्दुल्ला सरीखे नेताओं की मौजूदगी, नए समीकरण के सारे गणित मौजूद थे वहाँ। लालू यादव ने तो बोल भी दिया कि केंद्र सरकार के खिलाफ गठजोड़ की आवश्यकता है, और जैसे कि उम्मीद थी, भाजपा ने इस समीकरण पे चुटकी ली और इसे सिरे से खारिज कर दिया। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
आमी ममता बनर्जी ईश्वर ओ आल्लार नामे शपथ करितेछी।
तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी जब लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रही थी, उसी वक्त शपथ समारोह में मौजूद गैर बीजेपी दलों के नेता नए सियासी गठजोड़ की संभावना पर गौर कर रहे थे। ममता के शपथ समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव ने गैर बीजेपी नेताओं के मंच पर जुटने को विपक्षी एकजुटता के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि सभी नेता से मिलकर बात करेंगे और 2019 के लिए गठजोड़ तैयार करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ की जनता को भी बधाई और दीदी को बधाई। अभी आप लोग का, हम लोग चाहते हैं कि जो समान विचारधारा वाला दल है, धर्म निरपेक्ष दल है, भाजपा को, संघ परिवार को दिल्ली के गद्दी से उतारना बहुत लाजमी और जरूरी हो गया है, इसलिए हम लोग बैठ करके सब बात करेंगे।
वहीं फारूक अब्दुल्ला ने इस कोशिश को देश को जोड़ने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में सभी दलों को साथ लाने की कोशिश की जाएगी।
मुझे भरोसा है कि इस देश को एकजुट करने की प्रक्रिया में हम सभी शामिल होंगे।
ममता बनर्जी की बड़ी जीत के जश्न के बीच जब नए सियासी समीकरणों की तलाश हो रही थी, तो उनके समर्थक पीछे कैसे रहते? शपथ समारोह में जुटे समर्थकों ने कहा कि वो ममता को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन ममता फिलहाल ऐसी कोई महत्वाकांक्षा दिखाने को तैयार नहीं।
आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए कॉमनर, सो आई विल हेल्प ऑल ऑफ देम, नो प्रॉब्लम।
मैं खुद को आम जन के साथ जोड़कर देखती हूं। जिसे भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं मदद करूंगी, लेकिन मुझे लोगों के लिए काम करने दीजिए, मैं इसी काम के लिए समर्पित हूं।
ये थे ममता बनर्जी के शब्द। उधर विरोधी दलों के संभावित गठजोड़ की हलचल से भारतीय जनता पार्टी ज्यादा प्रभावित नहीं दिखी। ममता बनर्जी के शपथ समारोह में हिस्सा लेने आए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अतीत में ऐसे गठजोड़ तैयार करने के प्रयोग नाकाम हो चुके हैं।
Now the struggle going on in the Indian opposition as to who's the opposition of the BJP.
भारत के विपक्ष में इस बात को लेकर संघर्ष चल रहा है कि बीजेपी के मुकाबले कौन है, ये हमें तय नहीं करना है। ये कांग्रेस और राज्य के कथित मोर्चे के बीच मुकाबला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राज्यों के मोर्चे का विचार नाकाम हो चुका है।
ये थे अरुण जेटली के शब्द। भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा है कि ममता बनर्जी के शपथ समारोह में जुटे सभी विपक्षी नेताओं का बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर आना आसान नहीं है। बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। बिहार के महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ थी। ऐसे में गैर बीजेपी दलों के लिए शपथ समारोह में दिखी एकजुटता को आगे ले जाना बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।
ऐसा पहली बार नहीं है कि ऐसे नेता एक जगह आए हों और भाजपा के खिलाफ मोर्चे की बात हुई हो। एक बार तो कई दलों के विलय की बात भी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर कोशिशें नाकाम हुई। राज्यों में गठबंधन तो कई हुए हैं और बिहार का प्रयोग भी सफल रहा, जहां भाजपा की मिट्टी पलीद भी हुई, लेकिन क्या केंद्र सरकार के खिलाफ देश के गैर बीजेपी सत्ता वाली पार्टियां एकजुट हो पाएंगी? कितना कठिन होगा ऐसा होना और ये नई कोशिश कितनी उम्मीद जगाती है? हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने यही पूछा वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से।
पहले से आप पिछले 2-3 साल से देख ही रहे हैं कि लगातार गैर बीजेपी विपक्ष को एक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसी बातें कहना आसान है पर व्यावहारिक रूप से उसको जोड़ पाना आसान नहीं होता। और अगले साल जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे वहाँ ये अंतर विरोध आपको एकदम से साफ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ गैर बीजेपी विपक्ष एक साथ आ जाए तो आसानी से उत्तर प्रदेश में वो मोर्चा जीत सकता है, लेकिन आप देखिए ऐसा होगा नहीं। जैसे ममता बनर्जी चूंकि इस वक्त बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी शख्सियत हैं और शायद आने वाले समय में वो भी राष्ट्रीय स्तर पर इस गैर बीजेपी मोर्चा की एक बड़ी निर्णायक नेता बन सकती हैं, पर उनके पीछे जैसे लालू यादव हैं, केजरीवाल जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं या कुछ और आपको दिख जाएंगे, लेकिन अगर लालू यादव और नीतीश कुमार तो एक साथ आ गए पर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, मायावती एक साथ आ पाएंगे, इसकी कल्पना आप अभी नहीं कर पाएंगे।
इस तरह का जो एक गठजोड़ बनता है इसमें नेता कौन हो इसको लेकर भी कई बार मतभेद सामने आते हैं। जैसे नीतीश कुमार ने बिहार का चुनाव जीता तो उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की कोशिश शुरू हो गई। अब ममता बनर्जी के समर्थक उन्हें भी प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, क्या ये भी एक दिक्कत की वजह बन सकती है इस गठबंधन के बीच?
नेता का तो इश्यू आएगा ही, जैसे नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए पार्टी के और वो आगे आए, या ऐसा कहा जाता है कि ममता बनर्जी अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई और एक बड़ी नेता के रूप में आ गई, शायद वो राष्ट्रीय नेतृत्व में आए। मुलायम सिंह पहले से ही उनका एक दावा है, क्षेत्रीय नेता क्षेत्रीय तो है पर राष्ट्रीय स्तर पर वो नेता के रूप में आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो स्वीकृति है मायावती को अगर यूपी वाले भी स्वीकार करें और दूसरे प्रदेश के लोग भी स्वीकार करें तभी वो राष्ट्रीय नेता बन पाएंगी। जो ये स्वीकृति है यही सबसे बड़ा इशू है और आखिर में जाके टकराव होता है।
कांग्रेस अगर इस गठजोड़ में नहीं होती है तो ये जो गठबंधन अगर बनता भी है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये पेश कर पाएगा?
आज हमें ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस के लिए भी किसी गठजोड़ में शामिल होना एक बड़ी जरूरत है। ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस इस गठजोड़ से अलग होकर के कोई बड़ी ताकत बन पाएगी। अब कांग्रेस किस प्रकार से इन दलों को जोड़ेगी, बिहार में तो उनके साथ है लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी साथ नहीं है। अभी देखिए गुजरात में चुनाव होंगे, कर्नाटक में चुनाव होंगे, गोवा में चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव होंगे, हिमाचल में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। अगर ये गठजोड़ के रूप में हर जगह एक साथ लड़ पाए तब तो आसानी है, लेकिन मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या कर्नाटक में क्या कांग्रेस जो जनता परिवार के दल हैं उनके साथ मिलकर के गठजोड़ बना पाएगी? अगर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस भी, नीतीश कुमार भी, मायावती भी, मुलायम सिंह भी, जयललिता भी और करुणानिधि भी एक साथ आ जाएं पर क्या आएंगे और कैसे आएंगे? अगर आएंगे तो किस आधार पर, नीतियों के आधार पर आएंगे, क्या व्यक्तिगत नेतृत्व के आधार पर आएंगे, उसका नेता कौन होगा, उनका कार्यक्रम किस प्रकार का होगा? ये एक भानुमती का पिटारा है जिसको जोड़ना इतना आसान नहीं है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी। 3 दिन पहले ही मोदी सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं। पार्टी कई दिनों से जश्न मना रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का शंखनाद भी हो चुका है। पार्टी के सांसदों को सरकार की उपलब्धियां बताने का काम मिला है। रैलियां हो रही हैं, वादे किए जा रहे हैं। जश्न की इसी कड़ी में आज मोदी सरकार विकास पर्व मना रही है। दिल्ली के इंडिया गेट पर आज मेगा शो का आयोजन किया गया है। इसमें पीएम मोदी और कई केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे तो अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड की कई हस्तियां अपना जलवा दिखाएंगी। लेकिन कांग्रेस को ये कार्यक्रम बेमानी लगता है। एक रिपोर्ट के साथ हैं प्रभात पांडे।
मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए जश्न का दौर जारी है। केंद्र सरकार की 2 साल की उपलब्धियों के बखान के लिए पार्टी विकास पर्व मना रही है। 15 दिन के दौरान देश में 200 से भी ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की गई है। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कल मीडिया को बताया,
15 दिन तक विकास पर्व के नाम से 2 साल में सरकार ने जो कामकाज किया है उसको लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें होती है, जहां जहां विधायक चुनकर आते हैं, जहां जहां सांसद चुनकर आते हैं, शुरू से एक परंपरा रही है का जनादेश का हिसाब जनता को देना।
विकास पर्व के तहत आज दिल्ली में इंडिया गेट पर मेगा शो आयोजित होगा। कार्यक्रम की रूपरेखा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तैयार की है। इसमें मोदी सरकार की कामयाबियों का जिक्र होगा, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान जैसी सामाजिक योजनाओं से जुड़े ब्रांड एम्बेसडर भी अपनी बात रखेंगे। करीब 5 घंटे चलने वाले इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के साथ साथ इस कार्यक्रम का आयोजन आधा दर्जन अन्य शहरों में भी होगा। इनमें राज्यों के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। सरकार इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है लेकिन विपक्ष ने उस पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता शकील अहमद कहते हैं,
मोदी जी को हम लोग इवेंट मैनेजमेंट का एक्सपर्ट मानते हैं, लेकिन लगता है कि अब उनकी ये सलाहियत भी खत्म होती जा रही है। तो अब अपने से बड़े एक्टर को, अमिताभ बच्चन जी को और लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है ये, मगर अगर कुछ काम होगा उसका ना ढिंढोरा पीटेंगे। अब सांसद बेचारे आश्चर्यचकित हैं कि हम उपलब्धि बताएं तो क्या बताएं। एक कंक्रीट काम कोई दो साल में नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने।
कांग्रेस इस कार्यक्रम में अभिनेता अमिताभ बच्चन की मौजूदगी को लेकर सवाल उठा चुकी है। अमिताभ बच्चन ने कल इसे लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा,
मुझे एक छोटे सेगमेंट की मेजबानी के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं एक कैंपेन से जुड़ा हुआ हूं जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं उसी सेगमेंट को करूंगा। शो को माधवन होस्ट कर रहे हैं।
ये थे अमिताभ बच्चन के शब्द। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के कई दूसरे सितारे भी हिस्सा लेंगे और सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहेंगे, जरा मुस्कुरा दो।
तो केंद्र सरकार आज मनाएगी विकास पर्व।
बीबीसी इंडिया बोल।
आपकी उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छे दिन लाने का आश्वासन देकर पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए मोदी चहुमुखी विकास का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके आलोचक उन्हें सिर्फ बातों का धनी बताते हैं। इस बार इंडिया बोल में आपके पास मौका है मोदी के दो बरसों पर अपनी राय जाहिर करने का। साथ ही स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 28 मई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1800 11 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
भाजपा के सांसद और अयोध्या मामले को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले विनय कटियार का कहना है कि राम मंदिर तो अवश्य ही बनेगा, लेकिन लोगों को धैर्य बनाकर रखना होगा। बीबीसी के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मौजूदा माहौल से लेकर अयोध्या को सियासी मुद्दा बनाने जैसे कई विषयों पर खुलकर बात की। उनसे बात की बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने।
वातावरण तो अच्छा है, लेकिन जो विरोधी दल हैं वो सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं ताकि उसके आधार पर वो वोट को प्राप्त करें। कोई विकास का कार्य तो ठीक हुआ नहीं, केवल समाचार पत्रों में देना, विज्ञापन देना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं।
इस वक्त हम अयोध्या में बैठे हैं जहाँ की राजनीति से आपका नाम हमेशा जोड़ा गया है। राम मंदिर का जो 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 मूवमेंट था वो मूवमेंट और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एकदम साथ साथ ही चलते हैं, उसके बिना उनको देखना थोड़ा मुश्किल बताया जाता है। अभी क्या आपको लगता है कि क्या मंदिर का मुद्दा रहेगा?
नहीं, देखिए मंदिर का मुद्दा हमारा पुराना है, चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। जब तक मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण नहीं हो जाता है तब तक चलेगा।
2 वर्ष हो गए आपकी सरकार को, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब लोगों का जो पेशेंस है वो खत्म हो रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि भैया अब नहीं तो कब बनेगा, आखिर बनेगा भी कि नहीं बनेगा?
नहीं, लोगों को पेशेंस अपना बनाकर रखना पड़ेगा। ये कहते हैं कि अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा, ये बात ठीक नहीं। आखिर वहाँ पर तो राम मंदिर ही है, पूजा राम मंदिर की, राम भगवान राम की हो रही है, दर्शन लोग भगवान राम करने जा रहे हैं, इसलिए किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, सब कुछ वहाँ पर राम का है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग कहें कि भाई कब बनेगा, तो जो कुछ है आज है तो वहाँ पर हिंदू समाज का ही, राम भक्तों का ही है।
कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से उस पुराने मुद्दे जो मंदिर का मुद्दा है उसके ज़रिए जो एक हिंदुत्ववाद की बात है उसमें प्रवेश करना चाह रही है और लोगों तक पहुंचना चाह रही है, क्या ये सही है?
नहीं, गलत है, लोग इसको उछाल रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं। आखिर ऐसी तो कोई बात है नहीं, जहाँ जिस प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड में लोग भूखों मर रहे हों, पानी के लिए लोग तरस रहे हों, बेरोजगारी फैली हुई हो, वहाँ वो मुद्दा है कि ये मुद्दा है? तो वो राजनीति करना चाहते हैं, विकास काम तो उन्होंने नहीं किया है इसलिए उससे भागना चाह रहे हैं, वही काम हो रहा, भाग रहे हैं। अब जितना भागेंगे जनता उनको उतना दौड़ाएगी। हाँ, हमारा एक नारा जरूर है, जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश में राज्य करेगा। जब मैं हिंदू हित की बात करता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय के आधार को मैं मान के बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको बहुत व्यापक इस पर हिंदुत्व पर व्याख्या की है,
लेकिन जो निर्णय दिया है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि साहब हम आप हमारा सर जो है काट लीजिए लेकिन हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वो भी तो एक राजनीति है, उससे कैसे भाजपा निपटेगी?
एक एक व्यक्ति के कहने से तो काम चलता नहीं है, एक व्यक्ति ने अगर ऐसा कहा, बाद में वो भी मुकर गया, तो ऐसी स्थिति नहीं है भाई। देश के अंदर रहते हो तो आप, अगर कोई मुसलमान सिजदा करता है तो कहाँ करता है, धरती को करता है। पांच बार नमाज पढ़ता है तो उसके माथे पर जो दाग पड़ता है वो कहाँ को पड़ता है, इस धरती का पड़ता है। तो इसीलिए यही तो धरती है भारत माता जिसको हम कहते हैं। हाँ, जो देश का भक्त नहीं है, वो देश का विद्रोही बनना चाहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आजकल भारतीय शेयर बाजार में काफी तेजी देखी जा रही है। इस हफ्ते सेंसेक्स करीब 3 महीने के उच्चतम स्तर पर है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल से बात की और पूछा कि बाजार में तेजी की क्या वजह है।
प्राइमरी वजह ये है कि मॉनसून की जो फोरकास्ट है वो 109% की आई है एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा। उससे पहले सरकारी और प्राइवेट दोनों अच्छी प्रेडिक्शन आई है। प्रेडिक्शन ने बाजार को बहुत सहारा दिया है, ये तो प्राइमरी वजह है। सेकेंडरी वजह ये लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमीज के अंदर कुछ मजबूती दिखाई दी है। कच्चा तेल जो $28 प्रति बैरल चला गया था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल इकोनॉमीज डाउन जाती हुई लग रही थी, वो कहीं $48 बैरल के आसपास आ गया है। अमेरिका से, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अच्छा डेटा आया है। तो एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा व्यू ये है कि उन सब चीजों का इम्पैक्ट हमारी मार्केट्स पे पड़ा है, इस वजह से इतनी रैली आई है। देखिए, मानसून हमारे लिए बहुत रेलिवेंट चीज है। मानसून से जो हमारी रूरल डिमांड है वो जनरेट होगी। रूरल डिमांड ही 2 साल में हिंदुस्तान में कमजोर रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी इतनी गति नहीं पकड़ पाई है। अब रूरल डिमांड अगर जनरेट हो जाएगी तो ओवरऑल कहीं ना कहीं GDP ग्रोथ आएगी और ओवरऑल इकोनॉमी की दिशा और दशा संवर जाएगी, ऐसा मानना है और कहीं हद तक सर्टेनिटी भी है। और दूसरा, मानसून की वजह से जब खाने पीने का सामान, अनाज ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो उससे इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी और फिर RBI के इंटरेस्ट रिड्यूस होने की एक पॉसिबिलिटी भी बनती है।
बाजार में आने वाले दिनों में आप क्या स्थिति देखते हैं? क्या ये जो ट्रेंड पूरे हफ्ते में दिखाई दिया वो आगे बरकरार रहेगा? बाजार को पैमाना बनाकर आप अर्थव्यवस्था के लिए भी कोई संकेत देखते हैं क्या?
अर्थव्यवस्था से काफी अच्छी उम्मीदें लग रही हैं। ऑलरेडी 7.5% के आसपास की GDP ग्रोथ हम दिखा रहे हैं, जबकि वर्ल्ड की GDP ग्रोथ 3.3% के आसपास एक्सपेक्टेड है। यूरोप में कई कंट्रीज की आधा परसेंट, US में कई पॉकेट्स में 2%, चाइना भी हमसे पीछे है, जापान में तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स है। यानी बाकी दुनिया के मुल्कों के मुकाबले हमारी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी आज की तारीख में अच्छा परफॉर्म कर रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम अच्छे रहे हैं। अब जो रही सही कमी है वो अच्छा मानसून कहीं ना कहीं पूरी कर देगा।
और अब समय है फिल्म समीक्षा का। आपके लिए लेकर आए हैं अर्णव बनर्जी और उनसे बात की है इंदु पांडे ने।
वीरप्पन जैसा ना कोई था और ना कोई हो सकता।
क्या लिखा है? मदद।
हमारे साथ हैं अर्णव बैनर्जी, जो कि वीरप्पन देख के आ रहे हैं। तो अर्णव, आपको वीरप्पन देख के डर लगा कि नहीं?
देखिए, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि कुछ हाल ही में कई सारी बायोपिक्स बन रही हैं। बायोपिक्स बनाना बिल्कुल आसान नहीं है, हालांकि हमारे पास सब कुछ, सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स मौजूद होते हैं। राम गोपाल वर्मा की वापसी हुई है वीरप्पन से, लेकिन अफसोस कि मुझे नहीं लगता कि उनकी वापसी एक सही मायने में कही जाएगी। वीरप्पन उस खूंखार एक डाकू की कहानी है जो जंगलों में रहता था, जिसको ना तो कर्नाटक की पुलिस पकड़ सकी ना तमिलनाडु की। आखिर दोनों प्रदेशों की पुलिस ने मिलकर कहा कि चलो कुछ ऑपरेशन किया जाए जिससे पकड़ा जाए। जो संदीप भारद्वाज है वो लगते तो वीरप्पन जैसे हैं, लेकिन उनको बहुत वन डायमेंशनल दिखाया है। पूरी फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं पता चली हमें जो कि हमने ऑलरेडी अखबार में नहीं पढ़ी।
तो अर्णव, 5 में से कितने नंबर देंगे आप?
मैं वीरप्पन को 5 में से 1.5 दूंगा।
हर महीने इस तरह से लाखों रुपए बाहर। At this rate, it'll go bankrupt. Is that what she would have wanted?
आप अपनी बीवी के साथ डिस्कस करते हैं ये हर शाम कि डार्लिंग, अगर तुम कोमा में चली गई तो कितने दिन लाइफ सपोर्ट पे रहना चाहोगी?
चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं हम फिल्म वेटिंग की, जिसमें है कल्कि और नसीरुद्दीन शाह।
वेटिंग की कहानी ऐसी है जहां पर मेरे ख्याल से हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई करेगा। यानी दुख को कैसे हम झेलते हैं, दुख का मतलब अंतोनियो जिंदगी का। फिल्म एक बहुत ही मैच्योर फिल्म है और अलग किस्म की फिल्म है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल अलग किस्म की फिल्म को दर्शकों को जरूर देखना चाहिए।
तो फिर इसको नंबर देते हैं?
मैं वेटिंग को 5 में से 3 दूंगा।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का अशोक कुमार के साथ। जी अशोक।
जी पंकज जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कल शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह का शो पेश किया, जिस तरह कई नेता उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, वो आज के कई अखबारों की पहली हेडलाइन है। हिंदुस्तान टाइम्स ने ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने कोलकाता पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आरजेडी चीफ लालू यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, इन तमाम नेताओं के एक साथ फोटो छापी और लिखा है दीदी के मेहमानों ने की नए मोर्चे की बात। अखबार ने लालू के इस बयान को मोटे मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया है कि समान विचारधारा वाली पार्टियां भाजपा को रोकने के लिए साथ आएंगी और ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा देश को बांट देगी, वही उनका पुराना बयान। वहीं नवा टाइम्स इस पर लिखता है ममता के शो में फेडरल फ्रंट को मिली हवा। इसके अलावा हिंदी के अखबारों में भाजपा प्रमुख अमित शाह के इस बयान को भी तवज्जो मिली है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा, हालांकि उन्होंने इसकी कोई तारीख नहीं बताई है। अमर उजाला लिखता है कि सर्बानंद सोनोवाल को असम का सीएम बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक पद खाली है, तो दूसरा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए संतुलन साधना है, तीसरा उत्तराखंड का कोई भी प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौजूद नहीं है, ये सब बातें गिनाई गई हैं। वहीं हिंदुस्तान लिखता है इस फेरबदल में सहयोगी शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टी का भी एक एक मंत्री शामिल हो सकता है, तो पायनियर के पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान प्रमुखता से छपा है कि वो पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे बनाना चाहते हैं। आखिर में जिक्र डीएनए के एक कार्टून का, मध्य प्रदेश की घटना पर कार्टून में चुटकी ली गई है। इसमें दो अफसर बात कर रहे हैं, एक कहता है कि बहुत दिन से सोच रहा था कि ट्रांसफ़र करा लूं, नहीं हो रहा था, आखिरकार मुझे नेहरू की तारीफ में फेसबुक पर एक पोस्ट लिखनी पड़ी।
बहुत अच्छे। अब और अब समय है खेल की खबरों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आईपीएल 9 में कल दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला गया, जहां सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने नाबाद 93 रन बनाकर अपनी टीम को जीत की राह दिखाई और गुजरात लायंस के शिकंजे से मैच छीन लिया। सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जीत के लिए 163 रनों का लक्ष्य था, जो उसने 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही वो फाइनल में भी पहुंच गई, जहां उसका सामना रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। वार्नर को 7वें विकेट के रूप में विपुल शर्मा का बेहतरीन साथ मिला, जिन्होंने 11 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से नाबाद 27 रन बनाए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात लायंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 162 रन बना सकी। आरोन फिंच ने सर्वाधिक 50 और ब्रेंडन मैकुलम ने 32 रन बनाए। उधर कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में समाप्त हुई विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलो भार वर्ग में भारत की सोनिया लाथेर फाइनल मुकाबले में हार गई और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में उन्हें इटली की अलेसियो मेसियानो से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। उधर साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में कल तीसरे दौर के मुकाबलों में पुरुष एकल वर्ग में 9वीं वरीयता हासिल फ्रांस के रिचर्ड गैस्के ने 17वीं वरीयता हासिल ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को 6-2 7-6 6-2 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया, तो दूसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी बरे ने 27वीं वरीयता हासिल इवो कार्लोविच को संघर्ष करने के बाद 6-1 6-4 7-6 से मात दी। वहीं महिला एकल वर्ग में 6ठी वरीयता हासिल रोमानिया की सिमोना हालिप ने जापान की नाओमी ओसाका को 4-6 6-2 6-3 से हराया, जबकि 4थी वरीयता हासिल स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा ने बेल्जियम की यानीना विकमेयर को 6-3 6-0 से हराया।
और अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में, समय है प्रमुख समाचारों का।
बीबीसी समाचार, अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी के बीच हडसन नदी में गिर गया है। बचाव टीमों ने अब तक एक व्यक्ति को बचाया है और वो विमान का पायलट बताया जा रहा है। दुनिया के 100 से ज्यादा शीर्ष वैज्ञानिकों ने कहा है कि जीका वायरस के कारण ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में होने वाले ओलंपिक खेलों को रद्द किया जाना चाहिए या फिर उनका स्थान बदल देना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का अगले सप्ताह लंदन में दिल का ऑपरेशन होगा। उनकी बेटी मरियम नवाज ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने कल लगातार दूसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे थे नमस्कार भारत। कार्यक्रम का संचालन किया अजीत सारथी ने, पंकज प्रियदर्शी और अशोक कुमार को अनुमति दीजिए। मिलते हैं आपसे ठीक एक घंटे बाद। नमस्कार।